नमस्कार, ऊर्जा में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पिछले कुछ एपिसोड में यह स्पष्ट हुआ कि सभी प्रकार के कर्मों में मन के कर्म सबसे प्रमुख होते हैं। हमें अगर दुष्कर्मों पर रोक लगानी हो तो हमें मन को वश में करना होगा, उसे निर्मल करना होगा। हमने ये भी जाना कि विपश्यना एक ऐसी विद्या है जिसका उपयोग करके हम मन की गहराइयों तक पहुंच सकते हैं। हमने जाना कि विपश्यना के 3 चरण होते हैं। उसके पहले स्टेप शील के बारे में हमने बात की। आज हम उसके दूसरे स्टेप समाधि के बारे में कुछ प्रश्न पूछेंगे हमारे गुरुजी श्री गोयनका जी से। प्रणाम गुरुजी।
सुखी हो बेटी।
प्रणाम माताजी। गुरुजी, आज हम आपसे धर्म के दूसरे स्टेप समाधि के बारे में कुछ पूछना चाहेंगे। वैसे समाधि ये शब्द सुनकर हमें साधु संतों की याद आ जाती है, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे?
मुझे भी समाधि शब्द सुनकर के याद करके बचपन की कुछ बहुत मधुर स्मृतियां मन में जाग उठती हैं। बर्मा में मांडले में जहां हमारा घर था उसमें एक मंदिर नुमा कमरा था। माताजी कृष्ण की बहुत भक्त थी तो दीवार पर एक और रवि वर्मा का बहुत सुंदर श्री कृष्ण का चित्र लगा था। पिताजी शिवजी के बहुत भक्त थे, दूसरी ओर उतना ही बड़ा शिवजी का एक चित्र लगा था। वो चित्र मुझे बहुत आकर्षित करता था। पहाड़ों से नदी बह रही है, नदी के तट पर एक चट्टान पर शिवजी बैठे हैं ध्यान मग्न समाधिस्थ। उन्हें देखते ही भाव विभोर हो उठता था, अरे कभी मैं भी इस प्रकार समाधि कर सकूंगा। और ये बोल बार बार मन में उठते थे, कदा निलिम्प निर्झरी, कदा निलिम्प निर्झरी, निकुंज कोटरे वसन, शिवेति मंत्रमुच्चरण, कदा सुखी भवाम्यहम्। कभी ऐसा समय आएगा कि मैं भी किसी झरने के पास, किसी एक पुष्पों की कुंज वाटिका के पास शिव का मंत्र का उच्चारण करते हुए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते करते समाधिस्थ हो जाऊंगा और बड़ा सुख प्राप्त होगा। एक आध प्रयत्न किए, लेकिन सही माने में समाधि का अनुभव तब हुआ जब 31 वर्ष की उम्र में गुरुदेव से आजी उबाखिन के यहां पहले पहल 10 दिन के विपश्यना का शिविर लिया। उन्होंने जो समाधि का अभ्यास कराया तो सोचता तो ये था, ये तो बुद्ध का रास्ता है, तो ओम नमः शिवाय की जगह जो मुझे इसका मंत्र सिखाएंगे, ओम नमः बुद्धाय, ओम नमः बुद्धाय, ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर बात समझ में आई कि भगवान बुद्ध ने जो शिक्षा दी वो सार्वजनिक, तो ऐसा कोई आलंबन नहीं दिया गया जो कि किसी एक संप्रदाय में बांध ले। संप्रदाय को तोड़ने के लिए उन्होंने धर्म सिखाया, तो इस तरह का कोई आलंबन न देकर के ऐसा आलंबन दिया जो सार्वजनीन है, जो सबका है। एक तो लक्ष्य उसका ये कि उस आलंबन के द्वारा चित्त एकाग्र हो जाए, लेकिन केवल वही नहीं, उससे बड़ा उद्देश्य ये कि वो आलंबन केवल चित्त को एकाग्र ही नहीं करे बल्कि गहराइयों तक मन की जड़ों तक पहुंच जाए और वहां हमारे विकार जगाने का जो स्वभाव है उसे तोड़ करके चित्त को निर्मल करना शुरू कर दे।
तो गुरु जी, ये आलंबन क्या है?
चित्त को एकाग्र करने के लिए कोई ना कोई आधार चाहिए, उसे हम आलंबन कहें। भगवान बुद्ध ने हमें यह कल्याणकारी आलंबन दिया, हमारा ही अपना साहस, जो सदा हमारे साथ रहता है, सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते हर अवस्था में सांस आता है सांस जाता है, हमने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया। अब हमें सिखाया गया कि सांस की जानकारी, आ रहा है तो आ रहा है, जा रहा है तो जा रहा है, बस उसी को आधार बना करके चित्त को एकाग्र करो और उसको देखते 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 जो सच्चाई प्रकट होती चली जाए उस सच्चाई को देखते जाए। सच्चाई कहे कि अपने शरीर के प्रपंच की, अपने चित्त के प्रपंच की, इन दोनों की जो सम्मिश्रित घटनाएं घट रही हैं अंदर, क्या हो रहा है भीतर, ये सच्चाई प्रकट होती चली जाए तो सांस देखते देखते सत्य प्रकटता जाए और सत्य देखते देखते परम सत्य दिख जाए। ये जो सांस देखते देखते सत्य का प्रकट होना और सत्य को देखते देखते परम सत्य तक पहुंचना, ये तब होता है जबकि सांस को तटस्थ भाव से देखा जाए।
गुरुजी, अभी अभी आपने तटस्थ भाव की बात की, इस बारे में आपसे बातचीत जारी रहेगी लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, ऊर्जा में बात चल रही है तटस्थ भाव की। तो गुरुजी, सांस को ध्यान में रखते हुए तटस्थ कैसे रह पाए?
पहले समझो बेटी, तटस्थ शब्द का अर्थ क्या है। कोई तट पर स्थित है माने तट पर बैठा है और सामने नदी बह रही है, नदी बह रही है, वो सिर्फ देख रहा है उसे, नदी के बहाव में उसका कोई हाथ नहीं। वो तेज बहती है कि धीमी बहती है, कि उस पर ऊंची ऊंची तरंगे हैं कि बिना तरंग का पानी बह रहा है, वो केवल देख रहा है दृष्टा भाव से, इसको तटस्थ कहते हैं। अपनी ओर से सांस जैसे भी आ रहा है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी, जैसे भी है उसको देखना है, कर्ता भाव बिल्कुल नहीं हो कि हम सांस को जरा तेज कर दें, इसको भस्त्रिका बना दें तो इसका अपना लाभ होगा, या प्रयत्न करके इसको बहुत धीमा कर लें तो उसका लाभ होगा, ये सब गलत रास्ते ले जाने वाले। तो ये कुछ नहीं करना, जैसा है वैसा है, हम उसे साक्षी भाव से तटस्थ भाव से देख रहे हैं, सांस शुद्ध चल रहा है और शुद्ध सांस को हम जान रहे हैं, बस यही तटस्थ भाव है।
जी गुरु जी, अभी आपने शुद्ध सांस कहा, तो फिर शुद्ध सांस क्या है?
शुद्ध का अर्थ यह हुआ केवल सांस है, इसके साथ कोई मिलावट नहीं है, इसके साथ कोई शब्द नहीं जुड़ जाए, कोई आकृति नहीं जुड़ जाए, नहीं तो उसी में उलझ के रह जाएंगे। बस केवल सांस जैसा है वैसा है, केवल सांस को जान रहे हैं तो सांस शुद्ध है तो हमको अपने लक्ष्य तक पहुंचा देगा, और अन्यथा हमने कोई भी इसके साथ जोड़ दिया कुछ भी तो फिर वो प्रमुख हो जाएगा और सांस को भूल जाएंगे। कोई भी शब्द जोड़ दोगे और उसको दोहराते 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 मन एकदम एकाग्र हो जाएगा, एकाग्र तो हो जाएगा पर हम जिस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए काम कर रहे हैं वो छूट जाएगा। हमारा लक्ष्य है कि सांस को देखते देखते जैसा भी है जैसा भी है उसको तटस्थ भाव से जानते 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 स्थूल से सूक्ष्मता की ओर बढ़ते चले जाएंगे बढ़ते चले जाएंगे, और ऐसी अवस्था में पहुंचेंगे जहां मन की जड़ों तक पहुंच गए, वहां से विकार को निकालने का काम करेंगे। ये शरीर का प्रपंच कैसे काम करता है, चित्त का प्रपंच कैसे काम करता है, और उसकी वजह से कैसे विकार जागते हैं, और जागते ही नहीं फिर वो बढ़ते रहते हैं, संवर्धन होता है और बढ़ते बढ़ते हमारे सिर पर चढ़ जाते हैं, होश ही नहीं रहता। ये एक बहुत बड़ी कठिनाई है हर व्यक्ति की कि विकार जब सिर पर चढ़ता है तो बहुत समझदार आदमी भी ऐसी गलतियां कर जाता है जो सामान्य तो वो नहीं करता। तो हमें वो स्वभाव बदलना है कि विकार जागे और बढ़ना शुरू कर दे, वहीं हम उसको रोकें, तो वहां तक पहुंचना है। ये काम तभी होगा जबकि एक बात एक नियम बांध के चले, और इसे ही संतों ने कहा जो भी इस रास्ते पर चला कि था पिया न जाए ओ कीता न होए आपो आप निरंजन सोए। जो सच्चाई प्रकट हो रही है उस पर कुछ और थोपना नहीं, और कीता न हुई कुछ क्रिएट नहीं करना। रियलिटी नेचुरल होनी चाहिए, आर्टिफिशियल रियलिटी क्रिएटेड रियलिटी हमारे काम की नहीं, क्योंकि वो प्रमुख हो जाएगी। और एक दूसरी बात भी, क्योंकि धर्म सबके लिए होता है, ये मार्ग सबके लिए है, हम जैसे कोई शब्द जोड़ेंगे इसमें तो क्या शब्द जोड़ेंगे। अधिकतर जिसके प्रति हमारी बहुत श्रद्धा है, भक्ति है, किसी देवी के प्रति, किसी देवता के प्रति, किसी ईश्वर के प्रति, किसी ब्रह्म के प्रति, किसी अल्लाह ताला के प्रति, किसी गॉड के प्रति, जिसके प्रति श्रद्धा है उसी का नाम बार 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 दोहराएंगे, तो सार्वजनिक कैसे होगा। अगर कोई कहे कि आप सांस को भी देखते जाओ, और साथ साथ क्योंकि ये बुद्ध की शिक्षा है तो साथ साथ ये शब्द भी उच्चारण करो, बुद्ध 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 बुद्ध, तो कहेगा काहे बुद्ध बुद्ध, हम कहेंगे राम राम राम, और राम राम कहे तो कोई कहे काहे राम राम, हम तो कहेंगे अल्लाह अल्लाह। तो सार्वजनिक बात नहीं हुई, सबकी बात नहीं हुई। सारे रास्ते जो सच्चाई प्रकट हुई जैसी है वैसी है, उस पर कुछ आरोपण नहीं करेंगे तो हम ठीक रास्ते चलते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे।
जी गुरु जी, गुरु जी आपने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया कि कैसे मन को एकाग्र करना चाहिए। इसी विषय पर बातचीत जारी रहेगी, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का ऊर्जा में स्वागत है। गुरु जी, सांस को देखते देखते हम विकारों की जड़ों तक कैसे पहुंच सकते हैं?
सांस को इसलिए देख रहे हैं कि हम शरीर के बारे में पूरी जानकारी कर लें, ये शरीर प्रपंच कैसे काम करता है। चित्त के बारे में पूरी जानकारी कर लें, ये चित्त प्रपंच कैसे काम करता है। जो विकार हैं इन दोनों के संयोग से बनते हैं, ये दोनों जुड़ने से बनते हैं। जो एक भ्रांति पैदा होती है मैं मैं मैं, तो कभी शरीर को मैं करें, कभी चित्त को मैं करें, ये देहात्म बुद्धि ये चित्तात्म बुद्धि इसके बाहर कैसे निकले। तो केवल बुद्धि के स्तर पर काम करने से नहीं होगा, इसको देखते जाएंगे देखते जाएंगे देखते जाएंगे। तो सांस के सहारा इसलिए लिया कि सांस का संबंध शरीर से भी है और सांस का संबंध मन से भी है, इसलिए हमको सांस का सहारा लेना पड़ा। जैसे ही चित्त में कोई विकार जागेगा, सांस अपनी स्वाभाविकता खो देगा, स्वाभाविक नहीं रहेगा। गुस्सा आया कि क्रोध आया कि भय आया, अपने स्वाभाविकता खो करके जरा तेज हो जाएगा या रुक जाएगा, तो उसका मन से और मन के विकारों से गहरा संबंध है। और हमको इन दोनों के बारे में जानना है, शरीर के बारे में भी और मन के बारे में भी। तो ये सांस जब इन दोनों से जुड़ा हुआ है, इसके सारे 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 हम स्थूल से सूक्ष्मता की ओर बढ़ते हुए मन की गहराइयों तक जा पहुंचेंगे, जहां विकारों का जन्म होता है, जहां विकारों को बढ़ावा मिलता है और बढ़ते बढ़ते हमारे सिर पर सवार हो जाते हैं, इसलिए सांस का सहारा लिया गया।
तो गुरु जी, क्या इस तरह से हमें इन विकारों से मुक्ति मिल जाएगी?
अवश्य मिल जाएगी बेटी। हम काम क्या कर रहे हैं कि सांस को जानते जानते तटस्थ भाव कायम है, न सांस के प्रति राग जगाते हैं, न सांस के प्रति द्वेष जगाते हैं। आ रहा है तो आ रहा है, जा रहा है तो जा रहा है, और आगे का चिंतन नहीं, पीछे का याद नहीं, कुछ भी। इस क्षण जो हुआ, इस क्षण जो सच्चाई प्रकट हुई, हमने उसे स्वीकार किया। अगला क्षण जैसे ये क्षण बना, जो सच्चाई प्रकट हुई हमने स्वीकार किया। यूं क्षण प्रति क्षण सच्चाई के सारे 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 चलेंगे। तो सच्चाई के सारे चले और तटस्थ भाव से चले तो विकार जागे ही नहीं, तो अपने आप विकारों से मुक्ति होती चली जाएगी।
जी गुरुजी, गुरुजी आपकी ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ में आई। मुझे आपने कहा कि बचपन में आप श्री कृष्ण जी के भक्त रह चुके हैं,
चलो
तो अभी अभी सबने जन्माष्टमी मनाई है, इस अवसर पर आप उन्हें कुछ संदेश देना चाहेंगे?
जो कृष्ण के भक्त हैं, उनको भक्ति भाव सोच समझ के करनी चाहिए, ऐसी भक्ति जैसा कृष्ण चाहते हैं, ऐसा भक्त उन्हें प्रिय है। कैसा भक्त प्रिय है? अनपेक्ष है, सुचिर दक्ष है, उदासीनो गतव्यथ है, सर्वारंभ परित्यागी, यो मद भक्त समे प्रिय। ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। तो कैसा भक्त? अनपेक्ष है, जिसकी सारी अपेक्षाएं समाप्त हो गई, शुचि शुद्ध चित्त, नितांत निर्मल होना चाहिए, और दक्ष इस निर्मलता की क्रिया में दक्ष हो, मैं लाने न दे, आए तो तुरंत निकाल दे, तो वो शुचि दक्ष है। उदासीन हो, कैसे होता है कि वो समता में रहता है, और जब समता में रहता है तो गतव्यथ, सारे दुख अपने आप दूर हो जाते हैं, मन बड़ा प्रसन्न रहता है, दुखों से मुक्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि सर्वारंभ परित्यागी, आरंभ होने नहीं देता। क्या आरंभ नहीं होने देता? चित्त पर राग आरंभ नहीं होने देता, द्वेष आरंभ नहीं होने देता, भय आरंभ नहीं होने देता, अहंकार आरंभ नहीं होने देता, कोई विकार आरंभ ही नहीं होने देगा। सर्वारंभ परित्यागी ऐसा हो तो कृष्ण की भक्ति सार्थक हुई, और अन्यथा तो इसका भी केवल पाठ करके रह गए तो सार्थक नहीं हुई।
जी गुरुजी, गुरुजी मैं आशा करती हूँ कि आपका ये संदेश हमारे दर्शक जरूर ग्रहण करेंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर आप सबका स्वागत है ऊर्जा में। दर्शकों, हमारे इस प्रोग्राम का सेक्शन आप ही के प्रश्नों पर आधारित है। तो गुरुजी, पहला प्रश्न पूछ रहे हैं योगेश जी राजस्थान से। वो पूछते हैं कि गुरुजी, मैं जैन हूँ, भगवान महावीर की बड़ी श्रद्धा से पूजा करता हूँ, आजकल हमारे पर्युषण भी चल रहे हैं। गुरुजी, आप जो कहते हैं और हमारे धर्म में जो क्रियाएं हैं उनमें बहुत समानता है, आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे?
बेटी, किसी को भगवान महावीर के प्रति श्रद्धा जाग जाए, भक्ति जागे, बड़े कल्याण की बात हो। लेकिन कठिनाई ये हो गई कि हम भक्ति की शुद्धता खो बैठे, भक्ति को सकाम भक्ति बना लिया, कामनाएं हैं, हे देवी, हे देवता, हे ईश्वर, हे ब्रह्म, मेरी ये कामना पूरी कर, मेरी ये कामना पूरी कर। तो अपने को भगवान महावीर का भक्त कहने वाला व्यक्ति, धनवान व्यक्ति, एक संगमरमर का बहुत बढ़िया मंदिर बनाता है, उसमें बड़ी कीमती संगमरमर की मूर्ति स्थापित करता है, फिर हाथ जोड़ के कहता है, हे महावीर स्वामी, इतना तो मैंने कर दिया आपके लिए, अब ये जो 100 करोड़ वाली फैक्ट्री बैठाई है ना, ये चल पड़े तो सोने का छत्र चढ़ा दूं आप पर। अरे, घूस दिया चाहता सोने के छत्र का, और उस व्यक्ति को जिसने सारा वैभव त्याग दिया, राजपाट त्याग दिया, अरे कमर में लंगोटी तक नहीं रखी, उस व्यक्ति को सोने का छत्र दिया चाहता है, तो भक्ति कहां डूब गई? उसकी शिक्षा को समझे और उसे जीवन में धारण करें तो भक्त। भगवान महावीर की बताई हुई विद्या इसे भूल गए और कर्म कांडों में पड़ गए तो लाभ क्या हुआ? ये जो पर्युषण की बात की, क्या पर्युषण? पुरानी भाषा में कहते परेशन, माने पूरी तरह से खोज करनी। किस बात की खोज करनी? सच्चाई की खोज करनी। तो कहां खोज होगी सच्चाई की? इस 3.5 हाथ की काया के भीतर होगी। तो उसको देखते 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 हम ऐसी अवस्था पर पहुंच जाएं कि जहां राग दूर हो जाए, द्वेष दूर हो जाए, वीतराग बन जाए, विद्वेष बन जाए, तब तो पर्युषण सार्थक हुआ, नहीं तो वो भी एक कर्मकांड हो गया, उससे क्या बना? तो जैसे बताया गया वैसे जीवन में उतारे, उसका अभ्यास करे तो लाभ ही लाभ है।
गुरुजी, दूसरा प्रश्न पूछ रहे हैं दीपक काबरा जी दिल्ली से। क्या केवल हत्या न करने से ही कोई अहिंसक माना जाएगा?
काया से किसी की हत्या न करे तो अवश्य उसे अहिंसक कहेंगे, पर पूर्ण अहिंसक नहीं हुआ। हिंसा केवल काया से नहीं होती, वाणी से भी होती है। मन से भी होती है। वाणी से हम ऐसी बात करें जो लोगों को चुभ जाए तो हिंसा हुई। तो इस तरह मन से भी अगर कोई ऐसा चिंतन करें जो अपने लिए हानिकारक हो, तो इससे बचने के लिए तीनों पर संवर होना चाहिए। तो भगवान बुद्ध की यह वाणी सामने आती है, योच कायेन वाचाय मनसा चैन हिंसति। काय से नहीं, वाणी से भी और मन से भी हिंसा नहीं करता। सैवे अहिंसको होती यो परंग न विहिंसति। वो किसी की हिंसा करता ही नहीं, काया से भी, वाणी से भी, मन से भी, वो सही माने में अहिंसक है।
जी गुरुजी, गुरुजी अहिंसा की बात तो आपने बहुत ही अच्छी तरह से समझाई। गुरुजी आज का ये समय यहीं पर समाप्त होता है। प्रणाम गुरुजी।
शुक्रिया बेटा।
प्रणाम माता जी। तो दर्शकों, ये थे आपके प्रश्नों के उत्तर। अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय देखना ना भूलिए ऊर्जा। और हाँ, आप इसी तरह अपने प्रश्न भेजते रहिए। हमारा पता है ऊर्जा, जी नेटवर्क, पोस्ट बैग नंबर 1, अंधेरी ईस्ट, मुंबई 99, इंडिया, TVC। ईमेल response@znetwork.com। नमस्कार। एक सुखी जीवन की राह दिखाते इस कार्यक्रम ऊर्जा में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, ऊर्जा में फिलहाल बात चल रही है धर्म के दूसरे स्टेप समाधि की। समाधि, ये शब्द सुनते ही हमें साधु संत याद आते हैं। ऐसा लगता है जैसे हम सामान्य लोग ये नहीं कर पाएंगे। ये जो नेचुरल सांस पर ध्यान करने की बात है, ये कुछ नई सी लगती है। तो आइए इसी विषय पर जानकारी पाते हैं हमारे गुरु जी श्री गोयनका जी से। प्रणाम गुरुजी।
सुखी हो बेटी।
प्रणाम माता जी। गुरुजी पिछली बार आपने सम्यक समाधि के बारे में बात की, ये क्या होता है?
बेटी समाधि और सम्यक समाधि में बहुत बड़ा अंतर होता है। समाधि तो चित्त एकाग्र हो जाए तो उसे समाधि कहेंगे। किस आलंबन पर हो रहा है? अगर किसी कल्पना के आधार पर चित्त एकाग्र हुआ, किसी शब्द को दोहराते दोहराते हुआ, किसी आकृति का ध्यान करते करते हुआ, तो हम सच्चाई के साथ नहीं हैं, हमारी कल्पना के साथ हैं। और अगर हम ऐसा आलंबन लेते हैं जो अपनी अनुभूति में उतर रहा है, तो जैसे सांस का आलंबन लिया तो सांस आ रहा है, सांस जा रहा है, हम उसका अनुभव कर रहे हैं। और इसका अनुभव करते हुए न राग जगाते हैं न द्वेष जगाते हैं, तो चित्त कुशल है, अकुशल नहीं है। तो कुशल चित्तस्य एकाग्रता, ऐसी एकाग्रता जो कुशल चित्त से की जाए, उसमें एक अकुशल वृत्ति ना हो। ध्यान करते वक्त अकुशल वृत्ति है तो वो सम्यक नहीं। तो कुशलता के साथ हमारा चित्त एकाग्र हो तो समझो कि समाधि सम्यक होती जा रही है।
गुरुजी हमारा आलंबन सही है या नहीं, ये हम कैसे जाने?
बड़ा आसान है बेटी। जिस किसी आलंबन को प्रयोग में लिया जाए और देखें कि उससे राग जाग रहा है, द्वेष जाग रहा है, या मोह मूढ़ता जाग रही है, कोई कल्पना जाग रही है, तो सही नहीं है। और सच्चाई के साथ है तो राग नहीं जागेगा, द्वेष नहीं जागेगा, मोह नहीं जागेगा, तो कुशल है। एक बगुले को देखा होगा तालाब के किनारे एक टांग पर खड़ा है, कितना समाधिस्थ है, सारा ध्यान पानी में। पानी में कोई तैरते हुए मछली दिख जाए हड़प कर ले, समाधि उसकी। किसी शिकारी को देखा होगा, अपने दो नली बंदूक पर कैसे ध्यान लगाए बैठा है, सामने से कोई शिकार दिख जाए और धाएं मार दे उसको। ये समाधि हो सकती है बेटे, सम्यक समाधि नहीं, क्योंकि लक्ष्य क्या है? अगर लक्ष्य ये है कि हमको अपने चित्त को निर्मल करना है, ये राग रंजित रहने वाला चित्त कैसे वीतरागी बने, मोह विमूढ़ित रहने वाला चित्त कैसे वीत मोह बने, तो हमने सांस का आलंबन इसलिए लिया कि इसके प्रति न राग जागता है न द्वेष जागता है। सांस आता है तो हम नहीं कहते ओ रहा है, और जाता है तो नहीं कहते चला जाए, जैसा है वैसा है, उसे हम देख रहे हैं केवल। तो समाधि अपने आप सम्यक होती चली गई।
गुरु जी, क्या सचमुच सांस पर मन टिकाने का काम सब कर सकते हैं?
बेटी, जब आदमी ये दृढ़ निश्चय करता है कि मुझे मेरे मन को सच्चाई के आधार पर एकाग्र करना है, तो देखेगा सफलता मिलने लगी, क्योंकि अपने भीतर जो हो रहा है उसको साक्षी भाव से जान रहा है। देखेगा कि ध्यान करते करते मन भटक गया, फिर कोशिश की, फिर भटक गया, फिर कोशिश की, तो परिश्रम है, पुरुषार्थ है, युद्ध है अपने आप के साथ। हमारा शरीर कमजोर हो जाए और चलते हुए डगमगाएं, तो कोई समझदार हमें कहेगा कि अपने शरीर की कसरत कर, इसे दृढ़ बना, सबल बना, तो अच्छा जीवन जी पाएगा। ऐसे हम खुद देखते हैं, अरे मेरा मन कितना दुर्बल है, कितना दुर्बल है, कितना डगमगाता है, तो इसे सबल बनाना है। तो सबल बनाने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है। और सबल यही कि मन भटका कि वापस सांस पर ले आए। खूब देखेगा कि चित्त की चाल विचित्र है, झट नभ झट पाताल, कहां कहां भटकता है, इधर से उधर, इधर से उधर, कहां कहां भटका, लेकिन सांस सांस को देखते मंद पड़े चित्त चाल। जैसे जैसे वो दृढ़ है कि मुझको सांस देखना है, मुझको सांस ही देखना है, फिर ले आता है, मन भटकता है, फिर ले आता है, यूं ले आते देखता है कि उसकी जो भटकने की आदत थी वो कम होने लगी, उसकी चाल मंद पड़ने लगी। तो ये प्रयत्न करना पड़ता है, और प्रयत्न करने से सफलता मिलती है। लक्ष्य हमारा स्पष्ट होना चाहिए कि हम सांस को इसलिए देख रहे हैं कि हमको सांस के सहारे सहारे शरीर और चित्त की सच्चाई को जानते जानते, शरीर और चित्त के प्रति जो हमारी आसक्ति है, उसके प्रति राग है, जो द्वेष है, वो कैसे दूर हो, कैसे दूर हो, चित्त कैसे निर्मल हो, यूं आगे बढ़ते बढ़ते अंतिम अवस्था तक पहुंचते हैं। परिश्रम तो करना होता ही है
जी। गुरु जी, मन को सच्चाई के आधार पर एकाग्र करने की जो बात है आपने बहुत ही अच्छी तरह से समझाई। आपकी बात सुनकर तो मुझ में भी विश्वास जाग उठा है कि शायद मैं भी ये कर पाऊं।
अवश्य कर पाओगी।
गुरु जी, आपसे बातचीत जारी रहेगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है हमारे शो ऊर्जा में। गुरु जी, इससे पहले हमने डिस्कस किया कि सम्यक समाधि क्या होती है, ये भी जाना कि सांस पर मन का टिकाना क्या होता है, और ये हम सब कर सकते हैं। तो गुरु जी, आप बताइए कि आगे का काम कैसे होगा?
आगे का काम अपने आप होता चला जाएगा बेटी। लक्ष्य ये कि हम इस क्षण की सच्चाई को तटस्थ भाव से जान रहे हैं। सांस आया तो आया, गया तो गया, लंबा है तो लंबा, ऊंचा है तो ऊंचा, हम कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहे, ना उसको अच्छा मानते हैं ना उसको बुरा मानते हैं, जैसा है वैसा है। यूं जब हमारा मन स्थिर हो करके, समता में स्थिर हो करके सांस को देखता चला जाएगा, जानता चला जाएगा, तो अपने स्वभाव से सांस धीमा पड़ता जाएगा। तो जैसे जैसे सांस धीमा पड़ता चला गया, सांस धीमा पड़ता चला, उसके साथ मन भी हमारा सूक्ष्म होता चला गया, सूक्ष्म होता चला गया। तो मन जैसे जैसे सूक्ष्म होता चला जाएगा, संवेदनशील भी होता चला जाएगा, और सच्चाइयों को अनुभव करना शुरू कर देगा। प्रतिक्षण ये सारा शरीर, प्रतिक्षण इसमें कोई ना कोई बायोकेमिकल रिएक्शन होते रहते हैं, जीव रासायनिक प्रतिक्रिया होती रहती है, और उसके वजह से भिन्न भिन्न प्रकार की अनुभूतियां होती है। अब जैसे जैसे चित्त एकाग्र होता चला गया, सत्य के साथ एकाग्र होता चला गया, वैसे वैसे शरीर और चित्त के बारे में और गहराई से जानने लगे, और गहराई से जानने लगे, तो ये शरीर में क्या हो रहा है इसको जानने का काम शुरू कर दिया। चित्त को एकाग्र किया किसी शब्द के सहारे, किसी आकृति के सहारे, किसी फिलोसफी के सहारे, तो एकाग्र तो हो गया। लेकिन हमारे भीतर क्या हो रहा है? हमको अपने भीतर अपनी सच्चाई को जानना है। हम किसी कल्पना में अपने मन को एकाग्र कर लेंगे तो अपने बारे में कैसे जाने? हमारे भीतर राग जागता है कि द्वेष जागता है, ये कैसे जानेंगे? क्योंकि इस ओर ध्यान नहीं दिया। अब इस ओर ध्यान देंगे तो देखेंगे कि कोई ऐसा विकार जागा जिससे हम व्याकुल हुए तो मेरे भीतर ये खूट है, ये दुर्गुण है, तो ये दुर्गुण है, इसे दूर करना है। तो इस रास्ते अपने आप दूर होता चला जाएगा। देखिएगा, ये दुर्गुण तो मेरे मन में नहीं है, नहीं है तो मन के सारे दरवाजे बंद, ये दुर्गुण आने जाए। फिर देखेगा, अपने को ही देखना है, देखेगा मेरे भीतर ये सद्गुण है, अच्छे गुण है, तो गर्व में नहीं डूब जाना है, घमंड में नहीं है, अच्छी बात है, तो जो है उसको संभाल के रखेंगे। और देखेंगे ये सद्गुण तो नहीं है, तो ये सद्गुण नहीं है तो आना चाहिए, मन के सारे दरवाजे खोलेंगे, ये आना चाहिए। बस परिश्रम के ये चार ही अर्थ हैं। जो दुर्गुण है उसे कैसे दूर करें, बढ़ने ना पाए, जो दुर्गुण नहीं है वो आने ना पाए, जो सद्गुण है उसे कैसे संभाल के रखें, उसका बढ़ावा करें, जो सद्गुण नहीं है उसको कैसे ले आए, ये चारों अपने आप होने लगेंगे। जैसे जैसे सांस को देखते 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 सूक्ष्म होने लगेगा तो अपने आप मालूम होगा कि देख ये दुर्गुण जागा ना, देख ये जो अनुभूति हुई इससे राग जागा, और राग जागा तो मैं व्याकुल हो गया, ये अनुभूति हुई इससे द्वेष जागा, द्वेष जागा तो मैं व्याकुल हो गया, और व्याकुल कौन होना चाहता है? हर आदमी सुख शांति का जीवन चाहता है, लेकिन भीतर से कितना दुखी है, कितना व्याकुल है, अब स्वयं अनुभूति से जानने लगा, तो उसको जानते जानते अपने आप स्वभाव बदलना शुरू हो गया। देखा कि राग जगाते ही मैं व्याकुल होता हूं, द्वेष जगाते हैं व्याकुल होता हूं, राग न हो तो मेरी व्याकुलता दूर हो जाती है, द्वेष न हो तो मेरी व्याकुलता दूर हो जाती है। इतनी सच्चाई उपदेशों वाले नहीं है, हमारा अनुभव कह रहा है, हमारा अनुभव कह रहा है, और अनुभव भी गहराई में कह रहा है, चित्त की जड़ों पर जाकर के ये अनुभव कर रहे हैं, देख ये राग जागा और हम व्याकुल हुए, ये द्वेष जागा और हम व्याकुल हुए, और व्याकुल कोई नहीं होना चाहता, तो अपने आप उस पर संवर होगा, नहीं राग नहीं, नहीं द्वेष नहीं, जो कुछ अनुभव हो रहा है, अरे ये अनित्य है, ये नश्वर है, कितना ही सुखद अनुभूति क्यों ना हो, हमेशा रहने वाली नहीं है, समय पाकर समाप्त हो जाती है, कितनी दुखद क्यों ना हो, हमेशा रहने वाली नहीं है, समय पाकर के समाप्त हो जाती है। ये सच्चाई अनुभूति पर उतर रही है, वो उपदेशों की बात नहीं है, अनुभूति पर उतर रही है, अनुभूति पर उतर रही है, अपने आप स्वभाव बदल रहा है, बस ये स्वभाव पलटना है। इसलिए हमने सच्चाई का आलंबन लिया, सांस का आलंबन लिया, ताकि और सूक्ष्म सच्चाइयों की ओर बढ़ते चले जाए।
जी गुरु जी, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया। अगर हर व्यक्ति अपने सद्गुण और दुर्गुण जान ले तो वो अपने जीवन को पूरी तरह से सुधार सकते हैं। गुरु जी, आपसे बातचीत जारी रहेगी, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। एक बार फिर स्वागत है आप सबका ऊर्जा में। गुरु जी, आपने हमें समझाया कि हम अपने भीतर की अच्छाइयां कैसे बढ़ा सकते हैं, ये भी समझाया कि दुख और बुराइयां कैसे दूर किए जा सकते हैं। गुरु जी, गणेश चतुर्थी के अवसर पर हमारे दर्शक गणेश जी के बारे में कुछ जानना चाहेंगे।
बेटी, गणेश जी के बारे में पहले बहुत कुछ कह चुका हूं, लेकिन फिर भी और थोड़ी सी बातें विस्तार से कह लूंगा। पुराने जमाने में भारत में गणराज्य होते थे, और ये किसी राजा के राज से गणराज्य ज्यादा महत्वपूर्ण होते थे। तो गण का कोई ईश हो वो गणेश, गण का पति हो वो गणपति, गण का अधिपति हो वो गणाधिपति, तो ये गण के मालिक हैं। तो पहली बात तो कि वो गणपति है इसलिए महान है, तो कहा गणानंत गणपति वंग वामहे, ये महान इसलिए है कि गणपति है। और फिर कहा निधिनंत निधिपति वंग वामहे, जो निधि है उसे संभाल के रखेगा, तो निधिपति है। अपने यहां पुराने समय से एक बात चली आई, फीतो भवतु लोको चै, राजा भवतु धम्मिको। राजा धार्मिक हो जाए तो राष्ट्र में बहुत समृद्धि आए, वृद्धि आई, सिद्धि आई, समृद्धि आई, इन सब को संभाल के रखेगा क्योंकि वो धार्मिक है। और धार्मिक राजा कैसा होता है? उसमें प्रजा वत्सलता है, प्रजा को अपने संतान की तरह माने, जैसे अपने संतान को प्यार करता है, अपने संतान की रक्षा करता है, वैसे अपनी प्रजा की रक्षा करता है। राजा रक्खत धम्मेन अत्तनोव पजंग पजंग, अपनी प्रजा को अपने संतान की तरह रक्षित रखता है, सुरक्षित रखता है, सुखी रखता है। देश में समृद्धि हो रही है तो कितना खुश होगा। जैसे कोई पिता कोई माता अपनी संतान को सुखी देख के मोद से भर जाते हैं, ऐसे ही ये मोद से भरा रहता है, मेरी प्रजा कितनी सुखी है, कितनी सुरक्षित है, तो कितना मोद है। उस मोद के मारे एक प्रतीक दिया, मोदक दिया हाथ में। क्या मोदक है? माने ये मोद ही उसका आहार है। तो प्रिया नान्त्वा प्रियपति गंगवा महे, ये सारे प्रिय हैं, मेरी संतान है, तो इनका प्रियपति, इनका राज करता हूं इन पर मैं, तो इनको मुदित देख करके मैं मुदित होता हूं। इनके लिए मैं क्या करूं? राष्ट्र की कोई भी चीज कोई भी वस्तु कहीं नष्ट न होने पाए, छोटी से छोटी वस्तु भी उसका अपना मूल्य है, उसे संभाल के रखा जाए, उसकी भी अपनी कीमत है। ऐसा एक आदर्श गणपति। तो हम केवल नमस्कार करके रह जाएं, हे गणपति महाराज हमें ये दीजिए हमें वो दीजिए, तो समझे ही नहीं क्या दीजिए। हम उनके गुणों को याद करें और वैसे गुण आए हमारे अंदर, खास करके जिन लोगों पर राज्य चलाने की सत्ता का भार है, उनको तो गणेश जैसा गुण उनमें आए तो उनका भी कल्याण हो, देश का भी कल्याण हो। तो जो भी देश का संचालन करने वाले हैं, गणपति हैं, उनको प्रेरणा लेनी चाहिए, लोगों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए। गण है, सबकी जिम्मेदारी है। बस इस तरह से गणेश के गुणों को याद करके अगर हम गणेश चतुर्थी मनाएं या कुछ ही मनाएं, बड़ी अच्छी बात है, होना ही चाहिए, बाकी आमोद प्रमोद अपनी जगह, लेकिन जो गुण है उनको समझें, उनको याद करें, अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करें, तो गणपति की पूजा सार्थक हुई।
दर्शकों, अगला हिस्सा आप ही के प्रश्नों पर आधारित है, तो जाइएगा नहीं, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का ऊर्जा में स्वागत है। गुरुजी, पहला प्रश्न पूछ रहे हैं हिमांशु वोरा जबलपुर से। वो पूछते हैं कि मेरे मन में तो कई तरह के विचार आते हैं, ना तो मैं कुछ बोलता हूँ ना कुछ ऐसा वैसा करता हूँ, क्या तब भी मेरे कुछ कर्म संस्कार बनेंगे?
जरूर बनेंगे। मन में विचार अच्छे भी आ सकते हैं, बुरे भी आ सकते हैं। तेरे मन में अच्छे विचार आए तो बोले क्यों नहीं, उसे वाणी पर उतारे, शरीर के कर्म में उतारे, अच्छे विचार हैं, उनको वाणी में प्रकट करे, उसको शरीर में प्रकट करे, बहुत अच्छी बात, तेरा भी कल्याण और जो काम किया उससे औरों का भी कल्याण। मन में बुरे विचार आए, तूने रोक लिए, वाणी पर नहीं उतरने दिया, अच्छा किया। अच्छा केवल इस माने में किया कि किसी अन्य की तूने हानि नहीं की, पर बुरा यह किया कि तूने अपनी हानि कर ली। जब मन में विचार, बुरे विचार जागे, द्वेष के विचार जागे, दुर्भावना के विचार जागे, तो तूने कर्म संस्कार बनाने शुरू किए। मन का कर्म ही तो कर्म है, और मन में तो द्वेष जगाया जा रहा है, मन ही मन तो संस्कार बनाया जा रहा है, बनाए और समाप्त कर दिए, बहुत अच्छी बात की। तो संस्कार बने, फिर भी पानी पर लकीर जैसे बने, बने वैसे खत्म हुए, बने वैसे खत्म हुए। कुछ देर चले, कुछ देर चले तो जैसे बालू पर लकीर जैसे, तो कुछ अधिक समय तक वो कायम रहे। लेकिन बहुत देर तक केवल यही चिंतन चलता रहा, यही चिंतन चलता रहा जो सचमुच किसी को गाली देते वक्त तुम्हारे मन में चलता है, किसी की हत्या करते वक्त तुम्हारे मन में चलता है। तो मन का संस्कार तो वैसा ही है, खूब गहरा। और कितनी देर तक वैसे विचार तुम्हारे अंदर चल रहे हैं, उतने तुम्हारे कर्म संस्कार गहरे होते जा रहे हैं, पत्थर की लकीर जैसे, वो बड़ी खतरनाक। ये पानी की लकीर तो उत्पन्न हुई, नष्ट हो गई। बालू की लकीर भी इस जन्म में जितने बने अधिकांश यहीं समाप्त हो गई, थोड़ी बहुत के साथ गई होगी तो गई होगी। पत्थर की लकीर, एक एक लकीर हमारे लिए नया जन्म देने वाली। मृत्यु के समय न जाने कौन सी पत्थर की लकीर अपना सिर उठाएगी और अगला जीवन बिल्कुल उसी प्रकार का होगा। और ये दुर्भावना की लकीर बनाई थी तो अगला जीवन दुख से भरा हुआ होगा। तो इसके लिए सजग रहे कि कहीं मैं बोल तो नहीं रहा, शरीर से दुष्कर्म तो नहीं कर रहा, लेकिन मन में देख क्या पैदा कर रहा हूं, विकार भी दुष्कर्म के विकार पैदा कर रहा हूं, उससे अपने आप को बचाना है, उससे रोक लगानी है। और इस साधना में पकोगे तो रोक अपने आप लगती चली जाएगी।
शुक्रिया गुरुजी। गुरुजी अगला प्रश्न पूछ रहे हैं बलराज कुमार जी कन्याकुमारी से। वो पूछते हैं कि कृपया संस्कार शब्द को स्पष्ट करें।
संस्कार के माने कुछ बनना, कुछ बनाना। तो जो हमारा चित्त बना रहा है कुछ, उसको संस्कार कहें, उसी को कर्म संस्कार कहें। हम अपने भीतर क्या बना रहे हैं, किस तरह के कर्म बना करके कैसा बीज तैयार कर रहे हैं, वैसा फल आएगा। तो कर्म संस्कार, अच्छा कर्म संस्कार भी हो सकता है, बुरा कर्म संस्कार भी हो सकता है। अपने को जांचना है कि कहीं बुरा कर्म संस्कार न बना लें, अच्छे कर्म संस्कार बनाएं।
गुरुजी आपने हमारे सारे प्रश्नों के उत्तर बहुत ही अच्छी तरीके से समझाए। आज का ये एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। प्रणाम गुरुजी।
सुखी हो बेटी।
प्रणाम माता जी। तो दर्शकों ये थे आपके प्रश्नों के उत्तर। इसी तरह आप अपने प्रश्न हमें जरूर लिख भेजें। हमारा पता है ऊर्जा जी नेटवर्क पोस्ट बैग नंबर 1 अंधेरी ईस्ट मुंबई 99 इंडिया TVC। ईमेल response@znetwork.com। दर्शकों ये था हमारा आज का एपिसोड। अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय देखना ना भूलिए। ऊर्जा नमस्कार। नमस्कार। ऊर्जा में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों अब तक हमने धर्म के दो अंगों के बारे में जाना, आज बारी है तीसरे अंग की। गुरु जी कहते हैं कि धर्म के तीसरे अंग को प्रज्ञा कहते हैं। अब हमने ज्ञान के बारे में तो काफी कुछ सुन रखा है, तो ज्ञान और प्रज्ञा में क्या डिफरेंस है, आइए यही सवाल करते हैं हमारे गुरु जी श्री गोयनका जी से।
सुखी हो बेटी।
प्रणाम माता जी। गुरुजी हमने आपसे शील और समाधि के बारे में जाना, आज हम आपसे धर्म के तीसरे अंग प्रज्ञा के बारे में कुछ जानना चाहेंगे।
बेटी प्रज्ञा भारतीय अध्यात्म क्षेत्र में प्रज्ञा का बहुत बड़ा महत्व है, सभी परंपराओं में। मुझे अपनी बात याद है, किशोर अवस्था में ही प्रज्ञा के प्रति ऐसा आकर्षण जागा कि स्थित प्रज्ञ होना मैंने अपने मानस में अपने जीवन का लक्ष्य बनाया। मुझे स्थित प्रज्ञ होना ही है और इसके लिए बार बार ये श्लोक गुनगुनाते रहा। वीत राग भय क्रोध स्थित धी मुनि उच्चते। स्थित धी मन स्थित प्रज्ञ, उस मुनि को स्थित प्रज्ञ कहते हैं, जिसका राग का स्वभाव खत्म हो गया वीतराग हो गया, भय का स्वभाव खत्म हो गया वीत भय हो गया, क्रोध का स्वभाव खत्म हो गया वीत क्रोध हो गया। ये लक्ष्य है कि हम कैसे इन विकारों से छुटकारा पाएं। जो छुटकारा पाता है वो प्रज्ञा में स्थित होता है। और प्रज्ञा के बाद जो बार बार मन में उठते थे, नाभिनंदते न द्वेष्टे तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, अभिनंदन नहीं करता, मनचाही हो गई तो उसमें बहुत आनंद से नाचने नहीं लगता, द्वेष नहीं पैदा करता, अनचाही हुई तो मन में द्वेष नहीं पैदा करता, तो समझो प्रज्ञा में प्रतिष्ठित हुआ। मेरे सौभाग्य से 31 वर्ष की उम्र में पहली बार विपश्यना के शिविर में बैठा तो बड़ा सुखद आश्चर्य हुआ। अरे ये भारत की पुरानी विधि, ध्यान विधि, ये तो यही करना सिखाती है। जो केवल मन में एक आदर्श था, वो आदर्श कैसे फलीभूत हो, कैसे जीवन में उतरे, ये करना सिखाते हैं। दिस इज प्रैक्टिकल गीता। ऐसे मन में भाव जागा और सचमुच करते 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 उसका लाभ मिलने लगा। तो इस विद्या में, इस रास्ते पर जब हम सांस का काम करते हैं तब भी एक पहला कदम उठने लगता है, क्योंकि सांस का काम करते करते भी विचार आते हैं। ऐसा नहीं होता कि एकदम निर्विचार हो गए, निर्विकल्प हो गए, विचार आते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि विचार आए, हम फिर सांस पर आ गए, विचार आए, हम फिर सांस पर आ गए, ऐसे करते करते विचार आएंगे, बदलते चले गए। शुरू शुरू में तो किसके प्रति बहुत द्वेष है तो द्वेष का भाव जागता है, उसी के विचार जागते हैं। किसी के प्रति बहुत राग है तो राग का भाव जागता है। जैसे जैसे एक दिन बीतता है, दो दिन बीतता है, तीन दिन बीतते हैं, तो विचार चल रहे हैं, लेकिन अब विचारों में परिवर्तन आ गया। अब जो धर्म की बातें सुनी, धर्म की बातें पढ़ी, तो अब धर्म का चिंतन, जो विचार आ रहे हैं वो धर्म के आ रहे हैं, धर्म संबंधी आ रहे हैं। तो बस ये सम्यक दर्शन का, प्रज्ञा का पहला कदम शुरू हुआ।
गुरु जी, आपने अभी सम्यक दर्शन की बात की, तो इसमें हमें किसके दर्शन होते हैं?
सम्यक दर्शन को समझने के पहले दर्शन क्या होता है इसे समझना चाहिए, तब समझ में आ जाएगा किसके दर्शन होते हैं। भाषा कितने ही समृद्ध क्यों ना हो, फिर भी उसमें एक ही शब्द के अनेक अर्थों में उसका प्रयोग होता था, आज भी होता है। एक तो ये खुली आंखों को रूप देखें, कोई रोशनी देखें, कोई रंग देखें, कोई आकृति देखें, तो कहीं दिख रहा है मुझे इसका प्रकृति का दर्शन हो रहा है, व्यक्तियों का दर्शन हो रहा है। उसका सम्यक दर्शन से कोई दूर परे का भी संबंध नहीं। एक और दर्शन की बात चल पड़ी ध्यान में। लोग ध्यान करते हैं तो मान लो किसी आकृति का ध्यान किया, उस आकृति की जो तस्वीर बार बार देखते रहे, जो मूर्ति बार बार देखते रहे, मन पर उसकी गहरी छाप पड़ती गई। तो जिस आकृति का मन पर गहरी छाप पड़ गई हो, ध्यान करते करते उसका बाह्य प्रक्षेपण होने लगता है, माने बाहर दिखने लगती है वो। तो नासमझ साधक हो तो बड़ा खुश होता है, मुझे दर्शन हो गए। अरे क्या दर्शन हो गए? तूने एक काल्पनिक चित्र, एक काल्पनिक आकृति अपने मन में स्थापित की और बार बार दोहराते दोहराते इतने गहराई से उसे देखे कि वो बाहर उसका प्रकटीकरण होने लगा। इसका सम्यक दर्शन से दूर परे कभी संबंध नहीं, कोई लेन देन नहीं। जो सच्चाई अपनी अनुभूति पर, अपने भीतर इस 3.5 हाथ की काया के भीतर अनुभूति पर उतर रही है, वो सम्यक दर्शन शुरू हुआ। किस तरह से हमको अपने बारे में सच्चाइयां प्रकट हो रही है उसको हम जान रहे हैं, और जान करके उसके स्वभाव को समझ रहे हैं, और स्वभाव को समझ करके हम अपने विकारों से मुक्त हो रहे हैं, तो सम्यक दर्शन फलदायी हुआ, कल्याणकारी हुआ।
शुक्रिया गुरुजी। गुरुजी, अभी आपने जो सम्यक दर्शन के बारे में समझाया, इस बारे में आपसे बातचीत जारी रहेगी। यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ऊर्जा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। गुरुजी, आपने जो अनुभूति की बात की, उससे कैसा ज्ञान जगता है?
अनुभूति से जो ज्ञान जागता है वो सही ज्ञान है बेटी। अनुभूति को ही सम्यक दर्शन कहते हैं। तो
तो सम्यक दर्शन से जो ज्ञान जागा वो सम्यक ज्ञान होगा। ये जो प्रज्ञा है उसका अर्थ ये है कि ज्ञान प्रत्यक्ष हो, किसी अन्य को ज्ञान जागा, उसकी बात सुनी और हमने स्वीकार कर ली तो हमारा ज्ञान नहीं है, पराज्ञान है। तो अपना ज्ञान जगाता है, अपनी अनुभूति अपना ज्ञान जगाएगी तो समझो कि सम्यक ज्ञान की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। इसके भी तीन सोपान हैं, तीन चरण हैं, श्रुत ज्ञान या श्रुत प्रज्ञा, चिंतन ज्ञान, चिंतन प्रज्ञा और भावित प्रज्ञा। तो एक एक कदम आगे बढ़ते हुए हमें भावित प्रज्ञा की ओर जाना है। ये तीनों सोपान हमारे लिए अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाने वाले हैं।
गुरुजी, ये तीनों प्रज्ञाएं क्या होती है ये समझाएंगे?
पहले को कहते हैं श्रुत प्रज्ञा, सुनी सुनाई बात, पढ़ी पढ़ाई बात हमने स्वीकार कर ली, श्रद्धा से स्वीकार कर ली, अपनी परंपरा से मानते हैं इसलिए हम भी मानते हैं, ऐसे स्वीकार कर लिया, वो अपना ज्ञान नहीं है, पराया ज्ञान है, हमने केवल पढ़ा है, हमने सुना है और स्वीकार किया। लेकिन मनुष्य तो मनुष्य है, मनन करना, चिंतन करना उसका सहज स्वभाव है, प्राकृतिक स्वभाव है, इसीलिए उसे मनुपुत्र कहा गया, अपने मानस का पुत्र है, चिंतन मनन करना उसका सहज स्वभाव है। तो जो बात सुनी, जो बात पढ़ी, उस श्रुत प्रज्ञा पर अब वो चिंतन करता है, मनन करता है कि जो कुछ मैंने पढ़ा, जो कुछ मैंने सुना, क्या ये मान लेने लायक है, युक्तिसंगत है, ऐसे अपना चिंतन मनन करके जब समझता है कि ये ठीक है, मानने लायक है, उसे स्वीकार करता है, तो ये चिंतन प्रज्ञा हुई। लेकिन इसमें एक कठिनाई है कि अधिकतर चिंतन मनन करते हुए अपनी परंपरा की जो मान्यता है और उसके साथ जब गहरा चिपकाव है तो उसी को ये सही है ऐसा सिद्ध करने में अपनी सारी बुद्धि लगाता है, उसका वकील बन जाता है, तो ठीक से उसका चिंतन मनन नहीं हुआ, चिपकाव के साथ हुआ। चिंतन मनन आवश्यक है, लेकिन चिंतन मनन करके भी स्वीकार कर ले तो ठीक से चिंतन मनन करेगा तो अगला कदम उठाएगा। अधिकतर यह होता है बेटी, जिस परंपरा में कोई आदमी जन्मा है उसकी जो मान्यता है, अगर उसमें जरा वो तर्क वितर्क करता है तो उस परंपरा के, उस संप्रदाय के जो बड़े लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो कहेंगे तो कुतर्क करता है, हमारे शास्त्रों में तुम्हें विश्वास नहीं, तो जानते हो क्या होगा, मरने के बाद घोर नरक मिलेगा। और फिर उस नरक की व्याख्या करते हैं, ऐसा नरक, ऐसा नरक, बेचारे का जी कांपता है सुनकर के, अरे बाबा ऐसा नरक मिले तो मैं क्यों नरक की ओर जाऊं, आप जो कहते हैं मैं मानता हूं, वो तर्क संगत है या नहीं है, मानता हूं, स्वीकार करता हूं। एक प्रलोभन भी देते हैं कि हमारे यहां जो मान्यता है उसको तुम मान लोगे तो क्या होगा, मरने के बाद तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, और फिर स्वर्ग की व्याख्या, ऐसा आनंद है, ऐसा आनंद है, अरे बाबा मान लेने मात्र से स्वर्ग मिलता है तो हम क्यों नहीं माने, हम तो अभी मान लेते हैं। तो भयभीत होकर के माना कि लोभ लुब्ध होकर के माना कि अंधविश्वास से माना, माना ही माना, जाना नहीं। मानने और जानने में जमीन आसमान का अंतर है। तो ये दोनों की दोनों, श्रुत प्रज्ञा और चिंतन प्रज्ञा, अधिकतर पराई प्रज्ञा है, हमारी नहीं है। तो तीसरी भावित प्रज्ञा, कोई सच्चाई भावित हुई हमारे भीतर, भावित हुई माने घटना घटी हमारे भीतर और वो हमारे द्वारा अनुभवित हुई, हमने उसका अनुभव किया और वो बार 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 घटना घट रही है, हम उसका अनुभव कर रहे हैं, तो भावितो बहुली कतो, बार 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 होते होते सच्चाई को अनुभूति के स्तर पर जान रहा है। अब पढ़ी पढ़ाई बात, सुनी सुनाई बात, चिंतन मनन की बात, सही है गलत है उसको एक और, हमारा अनुभव क्या कह रहा है, तो उस अनुभव को जब मानने लगा तो सच्चाई के रास्ते चल पड़ा। अब वो सच्चाई को ही स्वीकार करेगा, वो भावित प्रज्ञा सही माने में वो प्रज्ञा है जो हमें कल्याण तक पहुंचाती है, हमारी मुक्ति तक पहुंचाती है, क्योंकि उस प्रज्ञा से हम सच्चाई को देखना शुरू कर देंगे तो उसका परिणाम मुक्तिदायक होंगे, सारे विकारों से छुटकारा मिलने लगेगा।
गुरुजी, प्रज्ञा के विषय में आपसे और भी जानना चाहेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर आप सबका स्वागत है ऊर्जा में। गुरुजी, आपने अभी प्रज्ञा के विषय में हमें बताया, हम और आसानी से जान पाए इसलिए एक उदाहरण देंगे।
अवश्य बेटी, कभी कभी धर्म की कोई बात उदाहरणों द्वारा और स्पष्ट होती है। तो एक उदाहरण, उदाहरण है केवल। एक बहुत भूखा व्यक्ति और धनी व्यक्ति किसी रेस्टोरेंट में गया, उसे जो स्थान मिला जो कुर्सी मिली बैठ गया। बैरे ने आकर के मेनू का कार्ड रखा सामने, वो उसे पढ़ता है, अरे आज तो यहाँ बड़े स्वादिष्ट भोजन बना है, ये आइटम है, ये आइटम है, ये आइटम है। मुंह में पानी आता है, एक घटना घटी। फिर बैरे से कहता है कि अमुक अमुक व्यंजन, अमुक अमुक भोजन मेरे लिए ले आओ। अब उसको समय लगेगा लाने में। इतने वो चारों ओर नजर पसार के देखता है, और लोग जो बैठे हैं उनको तो भोजन परोस दिया गया, वो भोजन खा रहे हैं। तो उनके चेहरे के हाव भाव देख करके वो समझता है कि इनको भोजन बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, सचमुच भोजन स्वादिष्ट है। तो फिर मुंह में पानी आता है। इसके बाद बैरा भोजन लाके रखता है और वो स्वयं खाना शुरू करता है। तो पहला तो श्रुत ज्ञान था, मेनू पढ़ा उसने, उससे उसकी भूख नहीं मिटी। और दूसरा चिंतन ज्ञान, चिंतन प्रज्ञा, दूसरे के चेहरों को देख करके, ऐसे चेहरे मैंने पहले भी देखे हैं, जो लोगों को स्वाद लगता है भोजन उनके ऐसे भाव होते हैं, तो जरूर भोजन अच्छा है। चिंतन करके उसने स्वीकार किया, उसका पेट नहीं भरा उससे। तीसरा भावनामय प्रज्ञा वाला भोजन आया है और हमने चख के देखा है, सचमुच स्वादिष्ट है, पेट भी भरा है। तो ये भावनामय प्रज्ञा ये प्रमुख है। श्रुत प्रज्ञा की निंदा नहीं करते, चिंतन प्रज्ञा की निंदा नहीं करते। इन दोनों से हमें प्रेरणा मिलती है, हमें मार्गदर्शन मिलता है। समझदारी के साथ उससे प्रेरणा लें, मार्गदर्शन लें, पर ये समझते रहें कि जब तक भावनामय प्रज्ञा का अनुभव नहीं हुआ मुझे, तब तक मुक्ति मुझसे बहुत दूर है। ये समझ करके उन दोनों का लाभ लेवे, उनसे प्रेरणा ले, उनसे मार्गदर्शन ले, और भावनामय प्रज्ञा को पुष्ट करता हुआ मुक्त अवस्था तक पहुंच जाए।
शुक्रिया गुरुजी। गुरुजी, प्रज्ञा के अभ्यास से हमारा मन निर्मल कैसे बनेगा, हमारा स्वभाव कैसे बदलेगा?
जो हमारा स्वभाव है, भोक्ता भाव का स्वभाव है, सुखद अनुभूति हुई तो सुख भोगने लगे, दुखद अनुभूति हुई दुख भोगने लगे, सुख भोगने लगे तो राग जगाए जा रहे हैं, राग जगाए जा रहे हैं। प्रज्ञा इस स्वभाव को पलटती है, हमें भोक्ता भाव से दृष्टा भाव में स्थापित करती है। हम दोनों ही अवस्थाओं को समता के साथ देखते हैं तो गांठें बंधनी तो दूर, जो गांठें बंधी हैं वो खुलनी शुरू हो जाती है। भोगता बनकर भोगते बंधन बंधते जाए, और दृष्टा बनकर देखते बंधन खुलते जाए। ये नियम प्रकृति का, और यही काम प्रज्ञा कराती है कि हम कैसे भोगतापन से छुटकारा पाए और दृष्टापन में स्थापित हो। ये काम केवल बुद्धि विलास से होता नहीं, केवल बुद्धि विलास से मुक्त हुआ ना कोई। जब अपनी प्रज्ञा जगे तो सहज मुक्त है सोई। अपनी प्रज्ञा जागे तो सच्चाई देखने लगा कि जैसे ही मैं प्रतिक्रिया करता हूं राग की या द्वेष की, व्याकुल हो जाता हूं, और व्याकुल होना कोई चाहता नहीं, तो अपने आप स्वभाव बदलना शुरू होता है।
शुक्रिया गुरुजी। गुरुजी, हमारा अगला सेक्शन दर्शकों के प्रश्नों पर आधारित है, तो दर्शकों जाइएगा मत, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। गुरुजी, पहला प्रश्न पूछ रही है दीपल मेहता जी जयपुर से। वो पूछती है, परिवार में सदस्यों के बीच बहुत तनाव बढ़ जाए तो क्या करना चाहिए?
विपश्यना करें, सारे तनाव दूर हो जाएंगे। लेकिन वैसे एक सामान्य तरीका भी है। एक बात ये ख्याल रखें, जीवन का बहुत सा समय ऐसा बीता होगा जब उस व्यक्ति के साथ हमारे स्नेह संबंध थे, अच्छे संबंध थे। अब किसी कारण से कोई घटना घट गई या कुछ हो गया, आपसे तनाव आ गया तो परस्पर द्वेष होने लगा, दुर्भावना जागने लगी। तो एक तरीका ये कि उन दिनों को याद करें जिस समय कि आपस में प्यार था, स्नेह था, उसको याद करने से मन में मोह जागेगा। अरे देखो इसका हमारे साथ ऐसा व्यवहार था, ऐसा व्यवहार था। आज जो व्यवहार में खराबी आई उसको याद करोगे तो द्वेष जागेगा। याद करे तो याद कर, बे दिन जत्थो प्यार, प्यार जगावे स्वर्ग सुख और द्वेष नरक को द्वार। तो क्या करोगे बार बार द्वेष करके? प्यार जागेगा, पुरानी बातें जो अच्छी बातें हैं, प्रिय बातें हैं, उनको याद करो। और फिर जड़ों से द्वेष निकालने के लिए, जड़ों से दुश्मनी निकालने के लिए, जड़ों से दुर्भावना निकालने के लिए विपश्यना करोगे तो देखते 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 अभ्यास करते करते भावित प्रज्ञा द्वारा अभ्यास करते करते जड़ों से निकल जाएगा। फिर वही व्यक्ति जिसके साथ संबंध खराब थे, अपने आप संबंध अच्छे होने लगेंगे।
शुक्रिया गुरुजी। गुरुजी अगला प्रश्न पूछ रहे हैं विजय कुमार जी दिल्ली से। गुरुजी मृत्यु हो जाने पर शरीर तो नष्ट हो जाता है, तो फिर हमारे कर्मों के अनुसार जो संस्कार बनते हैं वे हमारे अगले जन्म में कैसे साथ चलते हैं?
हमने पहले जितने संस्कार बनाए वो सारे संग्रहित हैं। इस क्षण हम पुराने संस्कारों का संग्रह लिए चल रहे हैं। इस क्षण ये भी हो सकता है कि हमने कोई नया बुरा संस्कार उसमें जोड़ दिया। ये भी हो सकता है कोई बुरा संस्कार हमने छोड़ दिया, हमने अच्छा संस्कार जोड़ दिया। इस क्षण हमने क्या किया? जो छोड़ा, जो जोड़ा, अगला क्षण वैसा ही बनेगा। हर क्षण पिछले क्षण की संतान है। तो जो पिछले क्षण अपने साथ लिए चल रहा है चित्त, वो साथ है, उसमें इस क्षण में हमने छोड़ा या जोड़ा उसके अनुसार फिर आगे का क्षण, यूं क्षण प्रतिक्षण, क्षण प्रतिक्षण। मृत्यु के समय क्या होता है? कोई पत्थर के लकीर वाला हमारा संस्कार, मृत्यु के समय उनमें से कोई ना कोई अपना सिर उठाएगा और उसी के अनुसार अगला क्षण, मृत्यु के समय इस जीवन का अंतिम क्षण अगले जीवन के प्रथम क्षण का जनक है। अगले जीवन का प्रथम क्षण इस जीवन के अंतिम क्षण की संतान है। तो जैसा ये क्षण चित्त की ये अवस्था इस समय, बिल्कुल वैसे ही अगले क्षण की अवस्था होगी। अब उसमें फिर हम यही जोड़ तोड़ करते चले जाएंगे और मृत्यु के समय फिर कोई गहरा संस्कार जागेगा, वो धक्का देगा, एक नया जन्म आएगा, फिर वो जो कुछ साथ लिए चल रहा है उसको कम करेगा, बढ़ाएगा। ये उसकी समझदारी पर है। समझदारी होगी तो बुरे कर्मों को दूर करेगा, अच्छों को बढ़ाएगा, ये प्रज्ञा से इस प्रकार करेगा। अन्यथा ना समझी होगी तो बुराई बुराई बढ़ाता चला जाएगा, दुख पर दुख बढ़ाता चला जाएगा और ऐसे ही जन्म मरण का चक्कर चलता चला जाएगा। नहीं तो जन्म मरण के चक्कर से बाहर निकल जाए, सारे संस्कारों को धो के साफ कर दे।
शुक्रिया गुरुजी। गुरुजी आज का ये एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। प्रणाम गुरुजी।
सुखी हो बेटी।
प्रणाम माता जी। तो दर्शकों ये था हमारा आज का एपिसोड। हमारे इस एपिसोड में हमने बात की धर्म के तीसरे अंग प्रज्ञा के बारे में। हमारे अगले एपिसोड में हम किस विषय पर बात करेंगे ये जानने के लिए देखना ना भूलिए। अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय ऊर्जा।